पेपर्स भी हैं सब।
हरे कृष्ण आवाज कर। ये कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने को दामोदर महीना भी कहते हैं, इसीलिए भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए ये गोविंद दामोदर स्तोत्र बिल्वा मंगल ठाकुर के द्वारा इसको गाएंगे। आप सब साथ दीजिएगा। अग्रे गुरुनामथ पांडवानाम अग्रे अग्रे गुरुनामथ पांडवानाम दुशासने नारित वस्त्र के दुशासने नारित वस्त्र के कृष्ण तदा क्रोशदनन्यनाथा तदा क्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति अग्रे कुरु नामथ पांडवानाम दुशासने नारित वस्त्र केश कृष्ण तदा क्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद बिल्वा मंगल ठाकुर ने ये बहुत सुंदर भजन लिखा है जहाँ वो कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हैं। प्रारंभ करते हैं उस असत सभा के वर्णन का जहाँ द्रौपदी को खींच कर लाया गया था। वो कहते हैं अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम। द्रौपदी को लाया गया द्रौपदी ने पहले कौरवों के सामने प्रार्थना की याचना की भीष्म से द्रोणाचार्य से धृतराष्ट्र से अग्रे कुरु नाम और फिर अपने पतियों की ओर मुड़ी अथ पांडवा नाम कहने लगी आप पति हैं कर्तव्य है आपका मेरी रक्षा करना इसलिए रक्षा कीजिए। दुशासने नारित वस्त्र पेशा लेकिन दुशासन शेष पकड़ कर खींच कर लाया था द्रौपदी को, और अब उसके वस्त्रों को खींच रहा है। द्रौपदी ने प्रयास किया, अपने एक हाथ से साड़ी को पकड़े, कृष्ण को पुकारा, कृष्ण नहीं आए। कृष्ण तदा क्रोशद अनन्य नाथा। तब द्रौपदी ने सोचा कि और कोई नाथ नहीं है, कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, और इसीलिए अपने दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी श्रद्धा से असहाय भाव में जोर से पुकारने लगी, गोविंद दामोदर माधवे की, गोविंद गोविंद दामोदर माधवे की। श्री कृष्ण विष्णु मधु कैतभारे, भक्तानुकंपिन भगवान मुरारे, भक्ता त्रायस्व मां केशव लोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण, हे विष्णु, वैसे कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है सर्वम व्यापनोति इति विष्णु, जो सब जगह व्याप्त है वही विष्णु है और वही कृष्ण है। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे मधु और कैतब के शत्रु मधु कैतब हारे, आप भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्तानुकंपीन भगवान मुरारे, त्रायस्व माम केशव लोकनाथ, हे सर्वलोकों के नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे मुरारी, त्रायस्व माम, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। इस भौतिक जगत में पड़ा हुआ हूं, आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है, ना ही आपके नाम में कोई रुचि है, इसलिए आपसे प्रार्थना है मेरा उद्धार कीजिए। इन कष्टों के सागर से मुझे निकालिए, त्रायस्व माम केशव, ताकि मैं बड़ी प्रेम से श्रद्धा से और जोर से आपका नाम पुकार सकूं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दद्यादि कामोह वशादवोच, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, गोपियां बाजार में निकली हैं, सर पर दही का मटका, माखन का मटका है, विक्रेतु कामा उसको बेचने निकली हैं, लेकिन उनके चित्त, उनके हृदय मुरारी पादार पिता। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित हो चुके हैं, इसीलिए पुकारना तो चाहिए था कि दही ले लो, माखन ले लो, कोई है जिन्हें दही चाहिए, लेकिन क्योंकि कृष्ण में आसक्ति है इसलिए उनके मुख से निकला गोविंद दामोदर माधवे की, गोविंद दामोदर, गोविंद दामोदर माधवे की। यशोदया गाध मुलुख लेना, गोकंठ पाशे नने बध्यमानम, गोकंठ रुरोद मंदम नवनीत भोजी, गोविंद दामोदर माधवे की, गोविंद, गोविंद दामोदर माधवे की। अब दामोदर लीला का वर्णन है। यशोदया गाधम उलूखलेना, बहुत भागी यशोदा मैया पीछे, माखन की मटकी तोड़कर भागे हैं कृष्ण, और यशोदा को पता कैसे चला कि कहां गए हैं, तो जमीन पर छोटे छोटे पांव के निशान हैं जो माखन में पड़ने से बन गए हैं। कृष्ण भाग रहे हैं, यशोदा पीछे पीछे, और फिर अंत में पकड़ ही लिया। कृष्ण बंध गए यशोदा के प्रेम से, रस्सी से नहीं बंधे थे। तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छा, प्रेम भक्ति से यशोदा के प्रेम से बंध गए। अब यशोदा ने पकड़ा है और बांध रही है, और कैसे, कौन सी रस्सियों से? गोकंठ पाशे नने बध्यमानम, गोकंठ गायों को बांधने वाली रस्सी से बांध दिया। वो भगवान जो बड़े बड़े योगियों के हृदय में नहीं बसते, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी जिनको पकड़ नहीं पाते, गोकंठ पाशे न निबध्यमानम, यशोदा मैया ने गायों को बांधने वाली रस्सी से बांध दिया है आज। और कृष्ण को देखिए, रुरोद मंडम, रो रहे हैं। रुरोद मंडम नवनीत भोजी, माखन चुराया है, नवनीत चुराया है, लेकिन अब रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन झूठे आंसू हैं, असल में नहीं रो रहे हैं, हाथों से आंखों को मसल रहे हैं। और उनको देखकर सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल बड़ी प्रसन्नता से, बड़े हृदय से पुकारते हैं, गोविंद दामोदर माधवे की गोविंद दामो गोविंद दामोदर माधवे की गोविंद मंदार मलेव नाभिरामं वंदा बिंबाधरे पूरित वेणुनादं बिंबा गो गोप गोपी जन मध्य संसा गोविंद दामोदर माधवे की भगवान अपने सभी अवतारों से अलग हैं। मंदार माले बदनाभिरामम बिंबाधरे पूरित वेणुनादम भगवान का वेणु बजाना, भगवान का सौंदर्य, कृष्ण की लीला और कृष्ण का अपने भक्तों से घिरे रहना, ये उनको उनके सभी अवतारों से सारे विस्तारों से श्रेष्ठ बनाता है। कृष्ण स्रोत है सभी अवतारों के, सारे अवतार कृष्ण से आते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों से घिरे रहते हैं और भक्त प्रेम से उन्हें पुकारते हैं। गोविंद दामोदर माधवे की गोविंद गोविंद दामोदर माधवे की गोविंद सुखम शयानां विनये च विष्णु सुखम शयानां निलये च विष्णु देवऋषि मुख्य मुनय प्रपन्न देव तेनाच्युते तन्मया ताम्रजेति गोविंद दामोदर माधवे की गोविंद बड़े सुख से शयन करते हैं शेषनाग पर। देवऋषि नारद और अन्य जितने मुख्य मुनि हैं भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तेनाच्युते तन्मया ताम्रजेति भगवान के नाम का उच्चारण करने से देवऋषि नारद जैसे ऋषियों को भगवान के ही समान शरीर की प्राप्ति हुई है। उनका भी आध्यात्मिक शरीर है और ये केवल इसलिए हुआ कि उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा से पुकारा गोविंद दामोदर माधवे की गोविंद गोविंद दामोदर माधवे की। प्रभात सज चरगतानुगाव तदरक्षणार्थं तनयं यशोदा प्राबोधयन् पाणिकलेन मंडन गोविंद दामोदर माधवे की गोविंद सुबह का समय है, प्रभात हुई है, अब गायों को लेकर जाना है चराने। लेकिन यशोदा देख रही है कि कृष्ण अभी सोए हुए हैं, सोच रही है प्रभात हो गई, तद रक्षणार्थम गायों की रक्षा करने के लिए कृष्ण को जाना है, और ये सो रहा है, क्या बात है। यशोदा जानती नहीं है कि वो रात को सुलाकर चली गई कृष्ण को, और फिर कृष्ण उठे और गोपियों से मिलने चले गए। सारी रात रासलीला रचाई है, बहुत थक गए हैं कृष्ण, और अभी अभी आए हैं, और आकर बस लेटे ही हैं कि यशोदा आती हैं। प्राबोधयन पानी तले न मंडम, कृष्ण के गालों पर बड़े धीरे से अपनी हथेली को रख रही हैं, और प्रेम से कृष्ण के कानों में कहती हैं, गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद, गोविंद दामोदर माधवेती, कंसर दूते नया देवनी तो, वृंदावनं ताद वसुदेव सुनो, रुरोद गोपी भवनस्य मध्ये, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद। कंस ने अपना दूध भेजा है, अक्रूर जी को भेजा है, कंसस्य दूते न यादे बनी तो, कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं अक्रूर जी वृंदावनंताद वसुदेव सुनो। अब वृंदावन से वसुदेव के पुत्रों को लेकर जाएंगे। सारे ब्रजवासी बहुत दुखी हैं, गोपियों ने रास्ता रोक लिया है, रथ के पहिए को पकड़ रही हैं, रथ के आगे लेट गई हैं गोपियां, जाने नहीं देंगे कृष्ण को। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं उन गोपियों का, अलग अलग प्रकार की गोपियों की क्या स्थिति हुई, कोई स्तब्ध रह गई, कोई मूर्छित हो गई, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने एक गोपी का वर्णन नहीं किया, और वो है यशोदा मैया। कृष्ण जा रहे हैं, बलराम जा रहे हैं, सारे ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, यशोदा नहीं है। बिल्वा मंगल ठाकुर बताते हैं, रुरोद गोपी भवनस्य मध्य, जब कोई जाता है उसके जाने की सूचना मिलती है तो दुख होता है, व्यक्ति चला जाता है तो भी दुख होता है, लेकिन जब जा रहा होता है तब बहुत दुख होता है। यशोदा देख नहीं सकती थी कि कृष्ण जा रहे हैं, इसलिए भवनस्य मध्य, नंद बाबा के भवन में अकेले बैठी हैं यशोदा मैया, सब लोग बाहर हैं, कृष्ण को रोक रहे हैं, यशोदा अकेली बैठी, आंखों में आंसू सिसक रही हैं, कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, कृष्ण की उन लीलाओं का स्मरण जो इतने वर्ष कृष्ण ने वृंदावन में की, और आंखों में आंसू लिए हृदय टूट रहा है और बड़े धीरे से अपने मुख से वो कह रही है, गोविंद दामोदर माधवे की, गोविंद गोविंद दामोदर माधवे की, गजस्व मंत्रं भवबन्धमुक्ते, दिव्यैरसज्जेतुलभं मनोजम्, द्वैपायनादैर्मुनिभिः प्रदत्तम्, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद हमारी जिह्वा को एक रस की आदत है, जिह्वा रसज्ञ है, तो प्रार्थना है भगवान से, श्री श्री राधा गिरिधारी जी से, कि हमारी इस जिह्वा को रस लेने की आदत है, भजस्व मंत्रम, इसको आपके नाम का महामंत्र का रस प्राप्त हो, और इसी मंत्र का भजन हम करें ताकि भवबंध मुक्ते। अगर जिह्वा को ये रस लग जाए, महामंत्र रस लग जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अगर इसका रस हमारी जिह्वा को लग जाए तो सारे बंधन कट जाएं, भव बंधन से मुक्त हो जाएं हम, द्वैपायन अनादर व्यासदेव इत्यादि मुनियों ने यही किया। व्यासदेव ने भागवत की रचना की और भागवत का सार दिया नाम संकीर्तन, भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्। अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं बड़ी श्रद्धा से, हृदय से, प्रेम से, निस्सहाय भाव से, तो फिर इस जगत में पुनः जन्म नहीं होता। इसलिए आइए इन नामों का हम लोग बड़े प्रेम से उच्चारण करें, गोविंद दामोदर माधवे की, गोविंद गोविंद दामोदर माधवे की, संसारे कूटे पतितो त्यगाधे, मोह अंध पूर्णे विषयाभितप्ते, करावलंबं मम देहि विष्णो, गोविंद दामोदर माधवे की, गोविंद गोविंद दामोदर माधवे की, गोविंद हे गिरधारी जी, प्रार्थना है आपसे, संसार कूपे पतितो त्यगाधे, इस अंधे कुएं में जिस संसार कहते हैं मैं गिर पड़ा हूँ। जहाँ मोह है, अंधकार है और एक अग्नि है जो जला रही है, संसार दावा नल लीठ लोका। इसलिए हे कृष्ण, हे गिरधारी जी, आपने वचन दिया है, भगवद गीता में आपने कहा है, ऐसे भक्तों को जो मेरी शरण आएंगे मैं उद्धार करूंगा, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जिनके चित्त मुझ में लगे हैं उनका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, ये आपका वचन है गिरधारी जी। और कब आऊंगा? भवामी न चिरात पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, देर नहीं करूंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। इसीलिए आपसे प्रार्थना है, करावलंबम मम देहि विष्णु, अपना हाथ आगे बढ़ाइए करावलंबम, और मैं इस विषमय मृत्यु सागर में गिरा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि यहाँ के कष्ट, यहाँ के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपका नाम लेने नहीं देते, आपकी सेवा करने नहीं देते। इसलिए हाथ आगे बढ़ाइए और मेरा उद्धार कीजिए, ताकि मैं प्रेम से गा सकूं। गोविंद दामोदर माधवे की, गोविंद दामोदर माधवे की, गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, दिव्य पिब स्वामृतम एतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे नारायण, हे वासुदेव, एक ही प्रार्थना है आपको, इस जिह्वा को अब एक ऐसा अमृत प्रदान कीजिए कि फिर ये जिह्वा कभी भी रुके नहीं आपके नामों को लेने से, सतत इस जिह्वा से आपका नाम निकले, आपका गुणगान हो, आपकी महिमा को गा सकूं, यही एक प्रार्थना आपके चरणों में है। इसीलिए हे कृष्ण, हे गिरधारी जी, आज आपके चरणों में आया हूं, स्वीकार कीजिए। बहुत पापी हूं, बहुत पाप किए हैं, भक्ति नहीं की, आपसे दूर रहा, आपको एक वचन दिया था जब माँ के गर्भ में थे तो भगवान के दर्शन हुए, हम सब ने एक वचन दिया भगवान को, बाहर निकालिए यहाँ से, बड़ा कष्ट है, वचन देता हूँ जैसे ही बाहर आऊंगा आपकी भक्ति करूंगा और फिर कोई माँ का गर्भ स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन हे कृष्ण, उस वचन को तोड़ दिया मैंने, इसीलिए कष्ट सहे, दुख सहे, अलग अलग योनियों में जीवन को स्वीकारा, अब आपकी शरण आया हूँ, स्वीकार कीजिए और मेरी जिह्वा को ये शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं आपके नामों का उच्चारण कर सकूँ। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे, जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, ब्रजकाचार्य स्तोत्र शक्षिष्मद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन देवी दिपंगराचार्य शिल प्रभुपाद की। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शक्षिष्मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की। ओम अज्ञानति निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। रविवार के कार्यक्रम में इस्कॉन के श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर में आप सबका स्वागत है। हम बड़े आभारी हैं आप सबके कि आप सब समय निकाल कर यहाँ भगवान की कथा के लिए हर रविवार नियमित रूप से आते हैं। भक्ति यही है कि हम भगवान के प्रति अपनी जीवन के समय को देना प्रारंभ करें, भगवान के प्रति नियमबद्ध हो जाएं, हम ये निश्चय करें जीवन में कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसी से भक्ति प्रारंभ होती है। कभी कभी हम लोग भक्ति के विषय में सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भक्ति बहुत बड़ी चीज है, हमसे नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्यों के द्वारा दिए गए मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो भक्ति बड़ी सरल हो जाती है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, केवल भगवान के नाम का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, ये बड़े शक्तिशाली मार्ग हैं, माध्यम हैं भक्ति में प्रगति करने के, और इसके द्वारा होता भी है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग हर रविवार को जितना समय हो सके उतना ज़्यादा यहाँ मंदिर में बिताएं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से इतनी अच्छी व्यवस्था हम लोगों के लिए यहाँ पर है, और भी भगवान प्रदान कर रहे हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर गिरधारी जी का नया घर तैयार हो जाएगा और गिरधारी जी अपने बड़े घर में जाएंगे तो गिरधारी जी को बड़ा मिलेगा तो हम लोगों को भी बड़ा मिलेगा ना। जैसे जो एक बड़ा व्यक्ति होता है बहुत बड़ी गाड़ी खरीदता है, उसमें एसी लगाता है, उसमें स्टीरियो लगाता है, बहुत सी सुविधाएं, बड़ी अच्छी गद्दी लगाता है, तो उसको तो मिलता ही है लाभ, लेकिन उसके ड्राइवर को बिना कुछ किए लाभ मिल जाता है ना। ड्राइवर कोई पैसा नहीं कमाता, कोई इतना धन नहीं इकट्ठा करता, चिंता नेता व्यापार नहीं करता, केवल मालिक की सेवा करता है। और मालिक ऐसा नहीं कहता कि देखो मैं एसी ऑन कर रहा हूँ गाड़ी में, तुम कंबल ओढ़कर बैठ जाओ, तुम्हें एसी नहीं मिलेगा। या मालिक ये नहीं कहता कि अभी मैं गाना लगा रहा हूँ, तुम कान में रुई भर लो, तुम ड्राइवर हो, तुम नहीं सुन सकते। कभी कभी तो जो ड्राइवर होता है वो मालिक से अच्छी स्थिति में बैठता है। घर के सब लोग आते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो पीछे चार लोग जरा बड़ी कठिनाई से बैठते हैं, लेकिन ड्राइवर वो बड़े आराम से बैठता है ना। तो जिसकी गाड़ी है उसको आराम नहीं है, लेकिन ड्राइवर को आराम है। क्यों? क्योंकि उसने सेवा स्वीकार की है। तो इसी तरह जब गिरधारी जी का बड़ा मंदिर होगा तो हाँ, कहने के लिए गिरधारी जी का बड़ा मंदिर है, वो तो अपने ऑल्टर में रहेंगे, लेकिन जो सेवा करेंगे उनके लिए लाभ होगा। इसलिए हमारे जीवन में ये जानना चाहिए कि सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब वैसे भी किसी न किसी की सेवा करते हैं, घरों में अपने परिवार की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, कोई राष्ट्र की सेवा करते हैं, लेकिन ये सारी सेवाएं शाश्वत नहीं हैं, जीवन के साथ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भगवान की सेवा ये शाश्वत है, ये हमारे साथ रहती है। एक कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस LIC, उसका एक लोगो है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, है ना? जीवन के बाद कहाँ रहता है? जो व्यक्ति मर गया वो कहाँ गया पता नहीं, कर्म कैसे किए, पाप किया तो जाकर कहीं पशु योनि में जन्म लेगा, कीड़ा बनेगा, कॉकरोच बनेगा, और जो उसका पैसा है वो जीवन के बाद भी कहाँ जाता है? दूसरों के पास। इसलिए जीवन के बाद भी यहाँ कुछ नहीं है इस भौतिक जगत में, कोई हमारी संपत्ति जीवन के बाद नहीं रहती, केवल भक्ति रहती है। इसीलिए स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और विशेष करके इस कार्तिक के महीने में की गई सेवा, कार्तिक ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही भक्ति प्रदान करने वाला महीना है। इसे कार्तिक क्यों कहते हैं? इसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि जब चंद्रमा पूर्णिमा के समय किसी नक्षत्र के पास होता है तो उस नक्षत्र के नाम से उस महीने का नाम होता है। जैसे जब चंद्रमा पूर्णिमा के समय मृगशीर्ष नामक नक्षत्र के पास होता है तो उस महीने को मार्गशीर्ष कहते हैं, और जब चंद्रमा पूर्णिमा के समय कृतिका नक्षत्र के पास होता है, ये एक नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, तो जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र के पास होता है उस महीने को कार्तिक कहते हैं या दामोदर महीना कहते हैं। जैसे आप में से जो लोग तिलक धारण करते हैं भगवान के नाम का, तो हम लोग 12 स्थानों पर तिलक लगाते हैं और 12 नामों का उच्चारण करते हैं, तो ये 12 नाम 12 महीनों के नाम हैं। जैसे उनमें से एक दामोदर भी महीना है, तो इसीलिए कार्तिक महीना इसलिए कहते हैं क्योंकि कृतिका नक्षत्र के पास अब चंद्रमा पूर्णिमा के समय आ जाता है, इसीलिए कार्तिक कहते हैं। इस महीने में व्रत करना होता है जिसे ऊर्ज व्रत कहते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन करते हैं, हमें ऊर्ज व्रत करना चाहिए। ऊर्जेश्वरी, ऊर्जा यानी शक्ति, श्रीमती राधा रानी, तो उनका भी महीना है ये कार्तिक का महीना, इसीलिए बहुत ज़्यादा तपस्या, बहुत ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। श्रीमती राधा रानी किससे प्रसन्न होती हैं? सेवा से। जब वो देखती हैं कि कोई भक्त छोटी सेवा श्री कृष्ण की कर रहा है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, कृतज्ञ हो जाती हैं और सोचती हैं कि इस भक्त ने सेवा की है श्री कृष्ण की, इसीलिए इसको मुझे सब कुछ प्रदान करना होगा। बाध्य हो जाती हैं श्रीमती राधा रानी थोड़ी सी सेवा देखकर। वैसे हम लोग कोई बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर भी नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में केवल 12-13 वर्षों में, सन 1965 में वो गए थे अमेरिका और सन 1977 में उन्होंने अपनी लीला समाप्त की, तो इन 11-12 वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की। हम यहाँ पिछले कई वर्षों से एक मंदिर की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, है ना? कितने वर्ष हो गए यहाँ आए हुए? करीब 17-18 वर्ष हो गए हमें। तो हम लोग प्रयास करें एक अच्छा मंदिर बने। प्रभुपाद ने 11 वर्षों में 108 मंदिर बना दिए, हजारों शिष्य बना दिए। तो हाँ, हम प्रभुपाद की तरह नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रभुपाद नहीं हैं, लेकिन फिर भी उस भाव को ग्रहण कर सकते हैं। हमारी जो भी सेवा है भगवान स्वीकार करेंगे। जैसे रामायण में उदाहरण है, हनुमान जी बहुत बड़ी बड़ी पर्वत की चोटियों को लाकर फेंक रहे थे पानी में, समुद्र में पुल बनाना है। और एक गिलहरी ने सोचा मुझे भी कुछ करना है। जय श्री राधा गिरिधारी जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। गिलहरी तो बहुत छोटी सी होती है, शक्ति नहीं है, तो बेचारी गई और रेत पर लौटने लगी। रेत के कण उसकी पीठ पर लगे, गिलहरी आगे गई, पानी में जाकर उस रेत के कण को गिरा दिया। हनुमान जी हंसने लगे, ये रेत के कण क्या करेंगे, इतने बड़ा पुल बनाना है। लेकिन श्री राम ने स्वीकार किया। श्री राम के लिए जो सेवा हनुमान ने की, वही सेवा उस गिलहरी ने की। तो श्री कृष्ण की सेवा में श्रील प्रभुपाद ने वो कार्य किया जो हनुमान जी किया करते थे। बड़े बड़े पर्वतों को लाकर उन्होंने बिठा दिया, 108 मंदिर स्थापित किया। लेकिन हम लोग उस गिलहरी की तरह हैं कि हमें अपनी छोटी सी सेवा करनी चाहिए, हमारी जो क्षमता है वो करनी चाहिए, भगवान स्वीकार करें। तो कार्तिक के महीने में सेवा को बहुत महत्व दिया गया है, अनजाने में की गई सेवा भी। स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर कथा है चूहे की, जिसने भगवान को दीप दान किया। दान नहीं किया था, वो तो बचा रहा था अपने आप को। ऐसे ही आया, उसने देखा कुछ खाने के लिए है, तो तुरंत उस जलती हुई लौ को, दीपक का था, उसको खाने लगा, तो अचानक जल गया। चूहा घबरा गया, भाग गया वहां से, और बाहर गया तो एक सांप ने उसको खा लिया। और स्कंद पुराण कहता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, रे चूहे को कैसे वैकुंठ मिल गया। तो भगवान ने उसकी वो दान की सेवा कार्य में स्वीकार कर ली। सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर कथा बताते हैं, इसी कथा को एक दूसरे तरीके से बताते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि एक बार एक चूहा आया, तो दीपक की लौ धीरे 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 कम हो रही थी। चूहे ने सोचा कि कुछ खाने के लिए है, घी की सुगंध आई उसको, तो चूहे ने पकड़ लिया, तो वो जो लौ थी वो उसके दांतों में फंस गई। अब दांत में फंस गई तो चूहा तो हमारी तरह ऐसे हाथ से निकाल नहीं सकता, तो चूहा तड़पने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा इधर उधर, और बहुत देर तक ऐसे करते करते उसका शरीर जल गया और वो मर गया। सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान ने क्या देखा, भगवान ने देखा कि ये देखो कितना बड़ा भक्त है मेरा, दीप भी अर्पण कर रहा है और साथ में नृत्य भी कर रहा है। तो भगवान ने उसको वैकुंठ को दे दिया, प्राप्त करा दिया। तो देखिए भगवान की कृपा कितनी है, छोटी सी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारी जड़ता, हमारी मूर्खता इतनी है कि हम वो छोटी सी सेवा करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया कि हमें सेवा का अवसर मिले। तो हमें प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इस कार्तिक महीने में हम भगवान की सेवा कर सकें। और कार्तिक में क्या करना चाहिए ये हम अभी थोड़ी देर में आपको समझाएंगे। पद्म पुराण में इसका बड़े विस्तार से वर्णन है। कुछ चीजें तो जरूर करनी चाहिए कार्तिक में, तो इसका वर्णन थोड़े समय बाद करेंगे। जब सेवा की बात आती है तो सेवा भाव से की जाती है, सेवा हृदय से की जाती है। भगवान भाव देखते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मूर्खो वदति कृष्ण, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभम तो समम पुण्यम, भावग्राही जनार्दन। इसमें कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति होता है जो विष्णाय कहता है। जैसे हम लोग जब कुछ अर्पण करते हैं तो कहते हैं ओम कृष्णाय नमः, ओम इत्यादि इत्यादि जो भी नमः, लेकिन विष्णाय नहीं कहते हैं, हम कहते हैं विष्णवे नमः। कभी आपने सुना है किसी ने कहा ओम विष्णाय नमः, नहीं, विष्णु के लिए विष्णवे कहा जाता है। तो श्लोक कहता है मूर्खो वदति विष्णाय, जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी है, वो विष्णाय कह सकता है। धीरो वदति विष्णवे, जो बुद्धिमान है वो विष्णवे कहेगा। उभौ तो समम पुण्यम, लेकिन दोनों को समान पुण्य मिलता है। क्यों? भावग्राही जनार्दन। अगर सही भाव से दोनों ने कहा है तो भगवान भाव ग्रहण कर लेते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि व्याकरण सही है या नहीं है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सही नहीं बोलना चाहिए। कल को हम हरे कृष्ण महामंत्र ही उल्टा सीधा बोलें और फिर अगर कोई पूछे कि अरे ये क्यों कह रहे हो, तो कह दे अरे भावग्राही जनार्दन, कृष्ण तो भाव ग्रहण करते हैं। नहीं, बोलने का प्रयास हमें पूरा ठीक करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई अनजाने में गलती हो जाती है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा को जितने अच्छे से कर सकें उतना अच्छा करना प्रयास करें। उसे वैष्णव कहते हैं। वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है जो दूसरों के लिए जीता है, उसे वैष्णव कहा जाता है। अपने लिए जीने वाला व्यक्ति वैष्णव नहीं है। वैष्णव वो है जो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण है और उनके लिए मेरा जीवन समर्पित है, वो वैष्णव है। वैसे वैष्णव शब्द की व्याख्या शिव जी ने महाभारत में दी है कि वैष्णव किसे कहते हैं। ये वो प्रसंग था जब द्रौपदी का अपहरण हुआ था। आप सब ने सुनी होगी महाभारत की ये कथा कि जब पांडव वन में थे तो एक समय बाहर गए हुए थे अर्जुन इत्यादि सभी भाई, और द्रौपदी अकेली थी अपनी कुटिया में, और वहां से उस समय जयद्रथ जा रहे थे, और जयद्रथ कहीं पर विवाह करने जा रहे थे, कहीं स्वयंवर था वहां जा रहे थे। तो बहुत सारे लोग गाजा बाजा और उनके साथ उनकी सेना इत्यादि चल रहे थे। चलते चलते जब उस मार्ग से निकले तो द्रौपदी को देखा। बहुत सुंदर थी द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी तो कोई साधारण स्त्री नहीं है, उनका जन्म भी साधारण नहीं है, यज्ञ से प्रकट हुई है वो, इसीलिए उनका एक नाम है यज्ञ सेनी। तो जयद्रथ बड़ा आकर्षित हुआ और जयद्रथ ने अपने एक मंत्री को भेजा, जाओ पूछो कौन है और पूछो मुझसे शादी करेंगे क्या। देखिए जो असुरों का भाव होता है कैसा भाव है। तो खैर वो गए, ये बड़ी विस्तार में कथा है, हम संक्षेप में बता रहे हैं। तो द्रौपदी समझ गई और द्रौपदी ने कहा कि जाकर कह दो कि मैं पांडवों की पत्नी हूं, और अगर कोई गलत दृष्टि रखी तो जीवित नहीं बचेगा ये जयद्रथ। तो फिर भी जयद्रथ माने नहीं, जयद्रथ ने जबरदस्ती द्रौपदी को अपने रथ में बिठा लिया, और थोड़े लोग भागे मदद करने के लिए, लेकिन जयद्रथ बड़ा शक्तिशाली था। द्रौपदी ने भी प्रयास किया लेकिन जयद्रथ बहुत शक्तिशाली था, लेकर चला गया। उसी समय अर्जुन और भीम वहां पर आए, और जब उनको पता चला कि द्रौपदी को लेकर चला गया है जयद्रथ, तो बहुत क्रोधित हो गए, भागे उस दिशा में और पकड़ लिया जाकर जयद्रथ को। जयद्रथ तो कांपने लगा, खास करके भीम को देखकर। भीम को युद्ध करने में बहुत आनंद आता था बचपन से, जब छोटे से थे भीम, एक समय कुंती महारानी की गोदी में थे, कुंती महारानी पर्वत के शिखर पर बैठी थी वन में जब पांडु महाराज थे, तो छोटे से बालक अभी गोद में थे, जन्म हुआ था थोड़ा ही समय, अचानक जोर से हवा आई और कुंती महारानी के हाथों से वो गिर गए। तो बहुत ऊपर से वो नीचे पर्वत पर गिरे, पर्वत की चोटी पर। तो कुंती महारानी तो एकदम घबरा गई। आप सोचिए एक माँ के लिए क्या स्थिति होगी कि उसका नवजात शिशु अभी अभी जन्म लिया है, थोड़ा समय हुआ है, गोद में है, और वो अचानक ऊपर पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गया। चोटियां बहुत खतरनाक होती हैं। अभी हम कुछ दिन पहले बद्रीनाथ गए थे, तो बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जब जा रहे थे तो हम लोग देख रहे थे, इतनी गहरी चोटियां थी, इतनी गहरी खाइयां थी कि अगर बस ऊपर से गिर जाती तो दिखाई भी नहीं देती कि कहाँ गई है, और बहुत रास्ते भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े थे। तो भीम गिर गए और कुंती महारानी बड़ी घबरा गई, भाग कर नीचे आई। तो नीचे आके क्या देखती हैं कि भीम जिस शिला पर गिरे, जिस पहाड़ पर गिरे वो पहाड़ चूर चूर हो गया और भीम आराम से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और जब छोटे से थे तो कौरवों के साथ खेलते थे, तो दो तीन चार पांच कौरवों को एक साथ पकड़ते थे और जोर से उनका सर ऐसे पटक देते थे। खेल खेल में, मतलब ये प्रेम था भीम का, बचपन से प्रेम दिखाते थे। तो अब तो उनको बहुत क्रोध आया, भागे तो जयद्रथ को पकड़ा और युधिष्ठिर महाराज के पास लेकर आए और कहा कि इसका अभी हम वध कर देंगे, मार देंगे इसको। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, ये हमारा संबंधी है, इसको नहीं मारना चाहिए, छोड़ दो। बहुत कहा अर्जुन ने, नहीं मार देते हैं, नहीं छोड़ दो। तो खैर अर्जुन ने कहा कुछ तो करना चाहिए, ऐसे कैसे छोड़ दें। तो उसके सर से बाल अलग अलग जगह से निकाल दिए और भीम ने कहा देखो तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगा, सबको जाकर ये बताना कि तुम मेरे दास हो। मैंने तुम्हें जीवन प्रदान किया है, ऐसा कहोगे? जयद्रथ ने कहा हाँ कहूंगा, सबको जाके कहना ऐसा। और फिर छोड़ दिया उसको। तो जयद्रथ को बहुत अपमान लगा, बहुत तपस्या की जाकर उसे, और तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से मांगा। शिव जी आए, शिव जी ने कहा क्या चाहिए? जयद्रथ ने कहा कि शिव जी मैं पांडवों को हराना चाहता हूँ, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं पांडवों को परास्त करूँ। शिव जी ने कहा संभव नहीं है, मैं भी ये वरदान नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। ने कहा नहीं, पांडवों को हराना है मुझे। तो शिव जी ने समझाया तुम जानते हो किसको हराने की बात कर रहे हो, वो अर्जुन, वो कृष्ण कौन है? वो नर नारायण ऋषि है और उनकी सेवा, उनकी तपस्या, उनके लिए तो सारा जगत तपस्या करता है, उनको हराना संभव नहीं है। और उस समय शिव जी ने कहा कि जब वामन देव आए थे, यही कृष्ण जब वामन के रूप में आए तो सारे ब्रह्मांड को उन्होंने भर दिया अपने अस्तित्व से, और इसीलिए ब्रह्मांड को भी वैष्णव कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में शिव जी ने कहा कि वैष्णव वो है जिसका सारा अस्तित्व कृष्णमय है, उसका अस्तित्व में कण कण में कृष्ण भरे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णवों के लिए ये बहुत प्रिय मंथ महीना है जहां हम भगवान की तपस्या आराधना कर सकते हैं। और बड़ी सरलता से प्रभुपाद ने बहुत सुंदर मार्ग दिया है, केवल श्रद्धा चाहिए। जब हम इन चीजों को सुनते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति किस आधार पर की जाती है? श्रद्धा। आपको कहा जाता है दरवाजे के पीछे जो है वो भगवान है, आप स्वीकार करते हैं, श्रद्धा। और क्या कारण हो सकता है? आपको कुछ पैसा दिया जाता है, यहां पर खड़े रहो, ये लो, जो कहेगा ये भगवान है 500 रुपया मिलेगा, नहीं। या फिर आपको डंडे मारे जाते हैं, एक व्यक्ति दो डंडे लेके खड़ा रहता है कि देखो देखो उधर, कहो भगवान है, नहीं कहोगे? श्रद्धा, जितनी गाढ़ी ये श्रद्धा होगी उतना भगवान के साथ आदान प्रदान होगा। महाभारत में ही एक बहुत सुंदर कथा आती है एकलव्य की। दरअसल जब द्रोणाचार्य ने अपने गुरु से ये विद्या सीखी तो परशुराम जी ने उनसे कहा था कि ये विद्या किसी गलत व्यक्ति को मत सिखाना, केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सिखाना और किसी को नहीं सिखाना। लोग आरोप करते हैं द्रोणाचार्य के ऊपर कि एकलव्य आए और उन्होंने सिखाया नहीं, जातिवाद कर दिया। नहीं, अपने गुरु के आदेश का पालन किया द्रोणाचार्य ने। तो एकलव्य आए, एकलव्य ने कहा मैं आपसे सीखना चाहता हूं, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, एकलव्य चले गए। और एकलव्य ने स्वयं अपने हाथ से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति से उन्होंने सीखना प्रारंभ किया। और एक समय जब अर्जुन इत्यादि आए जंगल में, उनके आगे कुत्ता चल रहा था, भौंक रहा था, तो अचानक कहीं से तीर आए और उस कुत्ते के मुंह में भर गए। और चलाने वाले ने इतनी दक्षता से तीर चलाए थे कि एक बूंद खून भी नहीं निकला। आप सोचिए कैसे होगा, कुत्ते का मुंह खुला था, सारे तीर आकर भर गए लेकिन एक बूंद खून नहीं निकला, अर्थात कुत्ते को दर्द नहीं हुआ लेकिन उसका मुंह बंद हो गया, भौंकना बंद हो गया। तो बड़े आश्चर्य की बात थी। तो अर्जुन ने जब देखा तो द्रोणाचार्य से कहा कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन ये देखिए ये कौन है। द्रोणाचार्य का देखता हूं। तो वो गए, देखा कि एक भील बालक एकलव्य, और उसने मूर्ति बनाई है द्रोणाचार्य की और सीख रहा। उसने द्रोणाचार्य ने पूछा किससे सीखा तुमने ये, आपसे सीखा। द्रोणाचार्य ने तो नहीं सिखाया, किसने कहा नहीं आपसे सीखा। फिर द्रोणाचार्य ने कहा अच्छा तुम मुझे गुरु मानते हो, हाँ तो ठीक है गुरु दक्षिणा चाहिए तो अपने सीधे हाथ का अंगूठा दे दो, क्योंकि उसी से तीरों को पकड़ा जाता है, वो नहीं है तो तीर नहीं पकड़ सकते। और देखिए एकलव्य की श्रद्धा और गुरु भक्ति। एकलव्य ने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, ये नहीं कहा कि अरे ऐसा कोई गुरु होता है क्या, ये कोई कहने की बात है। आजकल हम लोग कह देते हैं गुरु कुछ कहे तो हम कहें ऐसे थोड़ी होता है, मैं आपको समझाता हूँ सही बात क्या है। आजकल का ये जमाना है। एक बार एक लड़का एक गुरु के पास गया, गुरु जी मुझे ब्रह्म विद्या सीखनी है। ठीक है, तो वो कुछ कहते तो लड़का कहते ये तो मुझे पता है आगे बताइए, फिर कुछ कहते ये भी मुझे पता है आगे बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है काम करो, तुम्हें लगता है भूख लगी है, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूं। तो गिलास लेकर आए, खाली गिलास रखा, दूध का जार था, भरने लगे, पूरा गिलास भर गया, अब गिर रहा है और वो फिर भी भरे जा रहे हैं। तो लड़का कहने लगा अरे अरे गुरु जी क्या कर रहे हो आप, दिख नहीं रहा आपको क्या हुआ। अरे ग्लास भरा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं आ सकता, क्यों डाल रहे हैं। तो गुरु ने कहा यही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हारा ग्लास भरा हुआ है, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान अंदर नहीं जा सकता जब तक ग्लास खाली नहीं करोगे। इसी तरह जब हम गुरु के पास आते हैं तो अपना ग्लास खाली करके आना चाहिए। अज्ञानी चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के पास गए और वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने कहा तुम मूर्ख हो, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो बस, तुम्हारा उद्धार उससे ही होगा। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। ये भाव है गुरु के पास जाने का। तो तुरंत अपना अंगूठा काट कर दे दिया, लीजिए ये दक्षिणा। तो एकलव्य के पास क्या था, श्रद्धा। गुरु नहीं थे, केवल मूर्ति थी, लेकिन उस मूर्ति में श्रद्धा थी कि यही द्रोणाचार्य है। इसी तरह हम सब के पास श्रील प्रभुपाद की मूर्ति है सामने। अगर वो श्रद्धा है तो जैसे एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख ली, हम सब श्रील प्रभुपाद से माया से युद्ध करने की विद्या सीख सकते हैं, केवल श्रद्धा चाहिए। तो ऐसी श्रद्धा लेकर हमें श्रील प्रभुपाद के पास आना चाहिए। वो वैष्णव है जो गुरु में भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है। लेकिन जिन लोगों के पुण्य अभी पूरे नहीं है, इसीलिए हम लोग रोज कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, क्या है आगे, नमो नहीं है नाम ब्रह्मणी वैष्णवे। दरअसल हम लोग बोलते बोलते कभी कभी गलत बोल देते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि चार लोगों के प्रति कभी उस व्यक्ति की जिसके पुण्य कम है श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, और वो है महाप्रसाद के प्रति। हम सोचते महाप्रसाद ठीक है, आज राइस नहीं बना, आज दाल ऐसी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो महाप्रसाद के प्रति श्रद्धा नहीं होती। महाप्रसाद गोविंदे भगवान श्री गोविंद के प्रति नहीं होती, और नाम ब्रह्मणी भगवान के नाम के प्रति, और चौथा वैष्णवे, वैष्णवों में कभी श्रद्धा नहीं होती। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इस भाव से बाहर आने के लिए श्रील प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न करें। और ऐसा क्यों है कि हमारी ये जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, सुप्त प्रेम कृष्ण के प्रति, वो कहीं ढक गया है, दिखाई नहीं देता। कृष्ण को देखते ही आंखों में आंसू नहीं आते। इसका कारण कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में बताती है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर हैं और वो कहती हैं, अपनी दूसरी ही प्रार्थना में वो कहती हैं, ये बात बतलाती हैं। वो कहती हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिका छन्नम, माया का पर्दा है हम सब पर, इसीलिए न लक्ष्य से देख नहीं पाते हैं कृष्ण को। कृष्ण तो हैं, नटो नाट्यधरो यथा। जैसे एक नाटक में कलाकार होता है, वो एक राजा का वेश धारण कर लेता है, हम जान नहीं पाते कि ये कौन व्यक्ति है। इसी तरह कृष्ण हमारे सामने है, कभी गिरिधारी के रूप में, कभी राजबिहारी के रूप में, कभी गोपीनाथ के रूप में, कभी श्याम सुंदर के रूप में, कभी विग्रह के रूप में, कभी अवतारों के रूप में, लेकिन हमारी आंखों पर पर्दा है। माया जवनिका छन्न, आच्छन्न है, ढका हुआ है, इसीलिए न लक्ष्य से मूढ़ दृशा देख नहीं पाते। तो भक्ति वो मार्ग है जिसके द्वारा हम माया के इस पर्दे को हटाते हैं। भक्ति अगर हमें करनी है तो हमें कई चीजों को करना होता है, और भक्ति का प्रारंभ होता है भगवान का नाम लेने से, भक्ति का प्रारंभ होता है भक्तों की सेवा करने से, और साथ ही साथ भक्ति का प्रारंभ होता है अच्छे चरित्र से। जब हम अच्छा चरित्र निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्त हो जाना मतलब कोई नियमों का पालन नहीं। भक्त मतलब, श्रील प्रभुपाद ने कहा, एक बार उनसे पूछा गया कि आपके भक्तों को कैसे पहचान सकते हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहा, दे विल बी फर्स्ट क्लास जेंटलमैन, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति होंगे। इसीलिए चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहले के समय में एक कहावत इंग्लिश में कहा जाता था कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब वो कहते थे कि अगर धन गया कोई हानि नहीं है, स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ी बहुत हानि है, चरित्र चला गया तो सबसे बड़ी हानि है। लेकिन आजकल के जमाने में उल्टा हो गया है, कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आजकल ऐसा है कि चरित्र चला गया, खराब हो गया, कोई बात नहीं, कोई हानि नहीं, स्वास्थ्य गया हाँ थोड़ी बहुत हानि है, पैसा गया सबसे बड़ी हानि है, मनी इज हनी, पैसा तो सब कुछ है आजकल। लेकिन भक्तों के रूप में हम सबको चरित्र निर्माण पर बहुत जोर देना चाहिए। कैसा हमारा चरित्र हो, कैसा हम आचरण करें, क्योंकि चरित्र के द्वारा ही हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। ये जान लीजिए, भक्ति एक तरल रूप में है, लिक्विड फॉर्म है भक्ति। उसको ग्रहण करने के लिए पात्र चाहिए, तो वो पात्र क्या है, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता। अगर संस्कृति और सभ्यता नहीं है तो भक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते। और संस्कृति और सभ्यता का अर्थ है अच्छा चरित्र, अच्छे गुण। व्यक्ति को गुणों से जानना चाहिए। व्यक्ति को सुंदर उसका शरीर नहीं बनाता, व्यक्ति को सुंदर उसके गुण बनाते हैं। शरीर तो आज है और कल खत्म हो जाएगा, कितने समय रहने वाला है, हम सबको अनुभव है। व्यक्ति हमसे बात करता है, बोलता रहता है, थोड़े समय में चला जाता है, लेकिन हमारा जो भक्ति है, ये जो शरीर है, ये शरीर से सुंदरता नहीं है, सुंदरता गुणों से आती है। व्यक्ति को सुंदर गुण बनाते हैं, इसलिए गुण उत्पन्न करने चाहिए, भक्ति के गुण। आज वैसे समय थोड़ा कम पड़ रहा है, हम चाहते थे इस कार्तिक महीने में हुई थोड़ी बहुत लीलाओं का वर्णन करें, विशेष करके थोड़ा बहुत दामोदर लीला और भगवान की अन्य कई लीलाएं इस महीने में हुई शरद पूर्णिमा के दिवस पर। तो लीलाओं का वर्णन का समय नहीं है, केवल 5-10 मिनट बाकी हैं, लेकिन उन लीलाओं से जो हम सीखते हैं उसको वर्णन करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शिला प्रभुपाद समझाते हैं, भगवान ने रासलीला रचाई और हम सबको ये समझाया कि अगर गोपियों जैसी शुद्ध भक्तों के हृदय में भी अहंकार आता है तो भगवान उनको छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए पहला कार्तिक का दिन प्रारंभ होते ही, जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है, हमें मन में निर्णय लेना चाहिए कि आज से इस अहंकार को त्यागेंगे तब कृष्ण आएंगे, नहीं तो कृष्ण हमें त्याग कर चले जाएंगे। दामोदर लीला में भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिए कि हमें प्रयास करना चाहिए भक्ति के लिए और फिर उनकी कृपा आती है। नल कुंवर और मणिग्रीव ने भगवान से प्रार्थनाएं की, उनकी सारी प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबसे विनती है कि कार्तिक के इस महीने में उस प्रार्थना को याद कर लीजिए। भागवत के 10वें स्कंद में ये प्रार्थना है, नलकु मणिग्रीव की ये अंतिम प्रार्थना है। तो आप सबसे ये विनती है, इसको याद कीजिए, बारंबार दोहराइए ताकि हम उस भावना में आ सकें। नलकुवर और मणिग्रीव अपने स्थान वापस जा रहे थे, भगवान ने उनसे कहा तुम जाओ अपने धाम अलकापुरी जाओ कुबेर के स्थान पर, और फिर जीवन के अंत में तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे अगर वहां रहकर भक्ति करते रहे तो उस समय जाने के समय उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि हम तो वहां जा रहे हैं जहां पर बड़े भोग हैं, अप्सराएं हैं, मदिरा है और क्या क्या नहीं है, हमने तो पहले भी किया, नलकुवर और मणिग्रीव ने ये तो अपराध पहले भी किया था, तो हमने पहले भी किया है, तो अब क्या गाड़ी है कि हम बचेंगे, हम फिर से वो अपराध नहीं करेंगे, आप हमें फिर से वहां भेज रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रार्थना की, इस प्रार्थना को दोहराते हैं फिर इसका वर्णन करेंगे, कृपया आप भी दोहराइए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोने, स्मर्त्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, जगत् प्रणामे, दृष्टिं सतां दर्शने सुभवत्तनुना। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर ये प्रार्थना है, ये भक्ति का सारा मार्ग इस श्लोक में दिया है। अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, प्रारंभिक, मध्यम, शुद्ध भक्त, इस एक श्लोक से बन सकते हैं, इसलिए इसको आप सब याद कीजिएगा। तो उसमें प्रार्थना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, वाणी गुणानुकथने, हे कृष्ण आपसे ये प्रार्थना है कि हमारी वाणी सदैव आपके गुणों का वर्णन करती रहे। वाणी गुणानुकथने, हमने आपकी इतनी सारी लीलाओं को यहाँ पे देखा है, वृक्ष बने भी देख रहे थे और जब आपने हमारा उद्धार किया तब भी हमने देखा, तो इन लीलाओं को केवल हम जाकर सारे स्वर्ग में सुनाते रहे, जिस व्यक्ति को मिले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसलिए ये हमें शक्ति दीजिए ताकि हम माया में नहीं पड़े, भोगों में नहीं पड़े। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, और सुने क्या, श्रवण क्या करें, आपकी कथा। तो जिह्वा से, वाणी से सतत आपका नाम निकले, आपके गुण निकले, आपकी लीला निकले, और कानों में सतत हम आपके लीलाओं को सुनते रहे, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। और हस्तो, हाथ से क्या करें हम, हस्तौ च कर्मसु, आपके कर्मों में हम अपने हाथों को अपनी इंद्रियों को लगाएं, अपने पैरों से आपके मंदिर चलकर आए, अपने हाथों से आपका मंदिर साफ करें, आपके लिए हार बनाए, आपका श्रृंगार करें, आपके लिए भोग बनाए। हस्तौ च कर्मसु, और मनः, मन का क्या होना चाहिए, तव पाद योने, मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में लगा रहे। आप लोग के लिए बहुत सरल विधि बताते हैं भगवान को, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने की। जब हम गिरधारी जी के दर्शन करें तो बड़े ध्यान से, उन्होंने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, बांसुरी सोने की है या चांदी की है, मुकुट पहना है या पगड़ी बांधी है, हार कैसे पहने हैं, इस सबको बड़े ध्यान से देखें, मन से, मन की आंखों से। और फिर जब यहाँ से जाएं तो फिर उसका चिंतन करें कि भगवान के जो चरण थे उसमें एक बहुत सुंदर लाल रंग के, नीचे से थोड़े से लाल दिख रहे थे, ऊपर से सफ़ेद थे, चरणों में उन्होंने नूपुर पहने थे, लाल रंग के वस्त्र धारण किए थे, पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे, ऐसे सारे स्मरण कृष्ण का करते रहे। ये जो स्मरण है, भागवत में वर्णन है कि एक तलवार की तरह है, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। भागवत कहता है कि भगवान का स्मरण एक ऐसी तलवार है जो हमारे कर्म ग्रंथि को, कर्म बंधन को काट देता है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कथा में रुचि नहीं लेगा। तो इसलिए हम मन तव पाद योने, और फिर आगे वो कहते हैं स्मर्त्याम शिरस, हमारा सिर कहां पर झुके। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल आपके सामने हमारा सिर झुके और बाकी सबके सामने हम अहंकारी बने खड़े रहे, नहीं, वो कहते हैं कि मेरा सर हरेक वस्तु के सामने झुके। क्यों, तब निवास जगत प्रणाम है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप नहीं हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कृष्ण नहीं है? ऐसा कौन सा पत्थर है, ऐसा कौन सा अणु है जिसमें कृष्ण नहीं है? तो फिर वो कहते हैं कि मेरा सिर आपके सामने, हर ऐसे व्यक्ति के सामने, हर ऐसी चीज के सामने झुके जो इस सारे ब्रह्मांड में है, क्योंकि तव निवास जगत प्रणाम है, आपका निवास है उसमें हे कृष्ण। ऐसी एक स्थान बताइए जहां कृष्ण नहीं है। हम लोग कभी कभी कहते हैं भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब बाहर जाकर झूठ बोल सकते हैं भगवान के सामने, लेकिन ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां भगवान नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं तब निवास जगत नामे। और अंतिम बात बहुत सुंदर वो कहते हैं, दृष्टिम, दृष्टि अर्थात आंखों से हम क्या देखें। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सदैव हमारे सामने रहिएगा, भगवान हम केवल आपको देखना चाहते हैं, कहते नहीं, दृष्टिम सताम दर्शने, हम उनका दर्शन कर सके हे कृष्ण जिन्होंने आपके चरण कमलों की शरण ली है, जो आपके भक्त हैं। दृष्टिम सताम दर्शने भव तनूनाम, जिन्होंने आपकी शरण ली है, जो आपके भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, आपके दास हैं, हमारी दृष्टि उनका दर्शन कर सके, बस यही आशीर्वाद हमें चाहिए। तो आज के दिवस पर हमें भी यही प्रार्थना भगवान से दोहरानी चाहिए कि हे कृष्ण, मेरी वाणी आपका गुणगान कर सके, कानों से मैं आपकी कथा सुन सकूं, मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे, मेरा सिर हर उस व्यक्ति के सामने झुके, हर चीज के सामने झुके, अहंकार ना हो और दृष्टि मेरी केवल वैष्णवों का दर्शन कर सके। भागवत में कहा गया है, निमि महाराज कहते हैं भागवत के 11वें स्कंद में कि हाँ, जो मनुष्य देह है ये बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम देहो देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्य, इससे भी दुर्लभ एक और चीज है और वो क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान वैकुंठपति श्री कृष्ण उनके प्रिय भक्तों का दर्शन। ये उससे भी श्रेष्ठ है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन चीजों को करें। तो कार्तिक के महीने में आप सबसे विनती है, श्लोक को याद कीजिए, रोज दोहराइए, ताकि कम से कम बाहरी दृष्टि से हम इन चीजों को कर सकें। और पद्म पुराण में ये भी वर्णन है कि कार्तिक के महीने में कुछ चीजों को अवश्य करना चाहिए। इनको संक्षेप में बताते हैं। पहली चीज, हमें हर रोज दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। तो यहाँ मंदिर में व्यवस्था है, हर रोज शाम को 7:30 बजे दामोदर अष्टकम का पाठ होता है, तो आप लोग कृपया वहाँ आइए। तो सत्यव्रत मुनि ने इसकी रचना की है और वो लिखते हैं कि जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में दामोदर अष्टकम का पाठ करता है, निश्चित जीवन के अंत में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। तो पहली चीज आपके लिए ये है कि इस कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम का पाठ होना। दूसरा, भगवान का श्रवण कीर्तन बहुत ज्यादा बढ़ा देना। भगवान का श्रवण कीर्तन को बहुत बढ़ाना चाहिए, जितना हो सके श्रवण करना, कीर्तन करना। तीसरा, भगवान के मंदिर में तो हम लोग आते ही हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी खाने की एक प्रिय चीज को त्याग देना। तैयार है आप लोग? कोई नहीं है? एक प्रिय चीज केवल, जैसे आपको स्वीट खाना अच्छा लगता है, एक महीने के लिए त्याग दीजिए। आपको चपाती, पूड़ी, जो भी अच्छा लगता है, एक महीने के लिए बिल्कुल नहीं ग्रहण करना। और चौथा, भगवान को दीप दान करना। तो ये चार चीजें कार्तिक में अवश्य करनी चाहिए। याद रहेंगी आप सबको चार चीजें। पहली क्या है? जोर से थोड़ा बोलिए। दामोदर अष्टकम का पाठ। दूसरी, श्रवण कीर्तन बढ़ाना। तीसरा, एक कोई भी प्रिय चीज, मतलब प्रिय चीज मतलब खाने की केवल कह रहे हैं, नहीं तो आपको बहुत सारे प्रिय लोग होंगे, आप उनको भी त्याग देंगे, वो सब नहीं करिए अभी, केवल प्रिय चीज। और चौथा, दीपदान। तो इस कार्तिक के महीने में निश्चित कीजिए। और यहाँ राधा गिरिधारी मंदिर में ये व्यवस्था आपके लिए की गई है कि अगर आप दामोदर अष्टकम गाना चाहते हैं, 7:30 बजे शाम को होता है, आप दीपदान करना चाहते हैं, तुरंत उसके बाद दीपदान होता है, श्रवण कीर्तन, रोज सुबह भागवतम क्लास और शाम को भगवद गीता क्लास होती है, उसमें आइए। और चौथा क्या रह गया? एक चीज को त्यागना। अब वो तो मंदिर में नहीं होता है, मंदिर में तो आपको अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाया जाता है, लेकिन घर पर त्याग दीजिए, मंदिर में भी त्याग दीजिए। तो मूल उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर आइए इस कार्तिक के महीने में, इस व्रत का पालन कीजिए, और निश्चित है कि इस व्रत के पालन से कृष्ण की कृपा आप सब पर आएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।